सती नहीं है, हम ही लोग पतिव्रता है,
भ्रष्टा है।
भ्रष्टा कैसे कह दें, भ्रष्टा नहीं निकल रहे आप कह सकते हैं। तो पतिव्रता ने इस प्रकार का लांछन लगाती थी। एक दिन जोग माया जी ने एक क्रीड़ा किया, कृष्ण से मिली और एक कुछ बात होने के लिए उन्होंने उनको समझा दिया। कृष्ण एक दिन गोचारण से आकर के बोले लगे, आज हमारे पेट में दर्द हो रहा है या मेरी तबीयत बहुत खराब है। अब बचने की आशा नहीं, कहते 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 और थोड़े थोड़े देर में छटपट करते हुए सेंसलेस जैसे हो गए, मूर्छित जैसे हो गए। अब तो ब्रज में त्राही त्राही मच गई, यशोदा इत्यादि जी रोने लग गईं। अब बच्चे को कैसे बचाया जाए, किसी प्रकार से जोग माया को बुला करके लाया गया। जोग माया जी ने कहा, ये एक उपाय हो सकता है, मैं इसे जीवित कर दूंगी, किंतु कोई पतिव्रता स्त्री होनी चाहिए जिसको मैं एक घड़ा दूंगी जिसमें सहस्त्र छेद रहेंगे, और ये पास ही में जमुना जी हैं, जमुना जी से पानी भर करके ले आओ, कृष्ण को मैं अभिषेक करा दूं तो वो ठीक हो जाएगा। इसलिए कोई भी ब्रज में ऐसी कोई सबसे प्रसिद्ध जो पतिव्रता हो उनको ले आओ और ये घड़ा लेकर के जाए और जमुना जी से पानी लेकर के कृष्ण को स्नान कराऊंगी। लोगों ने कहा, जी ब्रज में कौन सबसे प्रसिद्ध पतिव्रता है? उन्होंने कहा, जी बड़ी अस्फालन कहती है जटिला और कुटिला, इन दोनों माँ बेटियों के पास में जाया जाए। उन्होंने कहा, जिसे उसे बुला लाओ। उन्हें बुलाया गया और जो मैंने कहा, जी ये घड़ा लेकर के जाओ और जमुना जी से पानी लाओ भर करके, और इसमें कृष्ण का अभिषेक करने से जीवित हो जाएगा, नहीं तो कृष्ण ये तो मर जाएगा। वो बोली, जाए ठीक है, मैं तो पतिव्रता हूँ, हमारे जैसा कोई पतिव्रता नहीं। और वो गई पानी लाने के लिए, जो ही पानी भरा और ऊपर से लेकर के घड़ी सिर पर रखेगी, इतने में सब पानी एक सेकंड के अंदर सब गिर गया। अब तो देख करके कहा, जी अब इधर उधर देखने लगी कोई है कि नहीं, और घड़ा वहीं पर रख करके और भाग गई। लोग कहेंगे, जी ये पतिव्रता नहीं है। इसके बाद उसकी लड़की आई, लड़की ने भी ऐसा किया, घड़े को पानी में भरा और रखने के लिए गई तो उसमें भी पानी सब कुछ गिर गया, पानी नहीं रहा तो वो भी भाग गई और बड़ी लज्जित हुई, ये जोग माया के सामने अब कैसे मुख दिखाऊंगी। फिर जोग माया ने कहा, अरे वो गई फिर लौटी नहीं, तो कहाँ गई? तो वो तो चली गई, वो पानी नहीं है, घड़ा वहां पर तट पर, जमुना के तट पर किनारे पर पड़ा हुआ है। अच्छा एक बात करो, मैं जानती हूँ मंत्र के बल से जो कौन ब्रज में सबसे पतिव्रता नारी है, मैं जानती हूँ, आप बतलाइए। तो जाओ वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधिका जी को बुला लाओ, और वो यदि पानी लाए तो पानी आ सकता है, इसके अतिरिक्त मैं दूसरी किसी को नहीं देती। लोगों ने जाकर के वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधिका जी से कहा, वो कहा, जी मैं नहीं जाती, चाहे वो बचे या न मरे मुझको कोई जरूरत नहीं है, मैं तो हमको तो चारों तरफ में ढिढोरा पीट करके और चारों तरफ में ये घोषणा कर दिया गया है हमारी सास और हमारी ननद ने कि ये पतिव्रता नहीं है, कृष्ण से मिलती जुलती है। फिर लोगों ने समझाया, जसोदा जी मैया ने उनके ठोट पकड़ करके बोले, जे बेटी तुम हमारे बेटे की जान रख लो। किसी प्रकार से कहने से श्रीमती राधिका जी गई और प्रणाम किया जमुना को और घड़ा में डुबाया और लेकर के अपने सिर पर रख दिया, पूरा का पानी एक बूंद भी नहीं गिरा, और पानी ले आई दिया और सब लोग ब्रज में देख रहे थे ये कौन पतिव्रता है। सब लोगों ने देखा, घोषणा हुई, जो पतिव्रता यही है जो पानी शस्त्र घड़े वाले छिद्र से और लेकर के कृष्ण को स्नान कराने के लिए ले आई। जोग माया जी ने घड़ा का पानी लिया और कृष्ण को अभिषेक किया और कृष्ण पानी देते ही बस उठ करके खड़े हो गए, कहने मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, अरे तुम जहाँ थे वहीं पर हो। इस प्रकार से चारों तरफ में ढिढोरा पिट गया कि श्रीमती राधिका जी से बढ़कर के और कोई पतिव्रता नहीं। अब से आज से यदि लज्जा लगेगी उन दोनों को, बेटी और माँ को, तो आज से वो इस प्रकार से बात नहीं करेगी। इस प्रकार से वो विवाद निमट गया और सब लोग ब्रज में समझ गए कि ये पतिव्रता है तो श्रीमती राधिका जी है।
महाराज जी धर्म देखिए।
हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यही है वास्तव जहाँ पर कृष्ण ने सखाओं के साथ बछड़ों को चराते हुए बहुगंध लीलाएं की हैं। जमुना किनारे बिहार वन इन्हीं समस्त स्थानों में गोचारण निमित्त कृष्ण बलदेव और समस्त सखा लोग यहाँ आया करते थे। प्रतिदिन मध्यान्ह में भोजन लीला यहाँ पर किया करते थे। भोजन करते करते सखाओं के साथ विविध प्रकार के हास्य परिहास, उसके बीच में भोजन की बड़ी तरंगमयी लीलाएं हुआ करती। इसके बीच में एक दिन बहुत बड़ा एक अजगर सर्प आया, जो कि अघासुर उसका नाम है, पाप की मूर्ति। कंस ने भेजा वह असुर यहाँ आकर के कुछ ही दूरी पर पहाड़ के समान पड़ा रहा। उसे देखकर सखाओं ने कहा, अरे ये पहाड़ कहाँ से आ गया है और बड़ी सुंदर कंदरा है, लाल लाल गलीचे बिछे हुए, बड़े बड़े खंभे लगे हुए, इस कंदरा के अंदर हम लोग चले वहीं पर खेलेंगे। अब कृष्ण से कुछ कहा नहीं, सखा लोग सब चले गए अंदर। कृष्ण ने मना किया, फिर कोई माने नहीं, सभी लोग दौड़े जाकर के सांप के मुंह में प्रवेश कर गए। प्रवेश करते ही सब बेहोश होकर के पड़े रहे। अब इधर में क्या हुआ, कृष्ण गए अंदर, जैसे प्रवेश किया इतने में सांप ने सोचा, अब तो मैं निकल गया, बस अब हमारा काम हो गया है। मुंह को बंद कर लिया, अंदर में जाते ही मानो गले में कोई आग का गोला आकर के अटक गया। ऐसी स्थिति में सांप तो छटपटाने लगा, छटपटाते छटपटाते उसका प्राण प्रखेर सिर फट करके वहीं से निकला और आकाश मार्ग में ज्योति के रूप में घूमती हुई वह ज्योति उसकी आत्मा। जब कृष्ण सखाओं को लेकर के बाहर आए तब उनके चरणों में आकर के समा गए। ऐसे समय में ब्रह्मा जी ने देखा कि जो स्वयं पाप की मूर्ति है, पाप के अंदर में कृष्ण ने प्रवेश किया और इस ब्रज में आकर के पाप से उद्धार हो जाता है, मुक्त हो जाता है। बड़ी आश्चर्य घटना है कि बड़ी कठिनाई से कठोर साधना करके मुक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है, और इस पाप को अघासुर को कैसे मुक्ति मिली। यह देख करके कृष्ण ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने कृष्ण की परीक्षा लेने की इच्छा की, क्या ये बालक नंद गोप नंदन है या सचमुच परब्रह्म है। और यदि परब्रह्म होंगे तब सखाओं के साथ में गोचारण करते हैं, भोजन करते हैं, झूठन का कोई विचार नहीं, इधर डोलते हैं उधर डोलते हैं, तो भगवान होकर के क्या कभी ऐसा खाते हैं, ऐसा भोजन करते हैं, ऐसा तो कभी होता नहीं है। विधि नियम आचार अनुष्ठान होता है, कितने विधि नियमों के साथ में पूजा की जाती है, और भगवान बिना विधि नियम के इस प्रकार लीला विलास कर रहे हैं, क्या ये भगवान है या नहीं, जानकारी करने की उनके मन में इच्छा हुई। तब उनकी इच्छा को देखकर कृष्ण ने सोचा कि अच्छा, इन्हीं के द्वारा कुछ लीलाओं को और भी प्रकट करना है तथा ब्रह्मा जी को अपने लीला दर्शन कराना है। ऐसी स्थिति में भगवान ने माया रची कि ब्रह्मा जी की बुद्धि पलट गई। उस समय उन्होंने परीक्षा लेने के लिए बछड़ों को चुरा लिया, छिपा लिया, छिपा करके कंदरे में धर दिए। फिर बछड़ों को चुराने के पश्चात सखाओं को भी ऐसे उठा करके दूसरे एक कंदरा में रख दिया और ऊपर से ढक्कन लगा करके बंद कर दिया, सबको सुला दिया। इधर में कृष्ण बैकुल होकर के ढूंढने लगे। जब ढूंढते ढूंढते पता नहीं चला तो ब्रह्मा जी वहां से चल दिए। चलने के पश्चात एक वर्ष हो गया, कृष्ण ने इधर सखा और बछड़ी का बेस बना करके जितने सखा और बछड़े थे उसी रूप में बन करके समस्त ब्रजवासियों के घर में गए और सबके सब सभी लोग उनको प्यार करने लगे। तो उनके प्रेम प्रति प्यार को स्वीकार करते हुए एक बरस तक लीलाएं की। इसके पश्चात ब्रह्मा जी जब लौटे तो ब्रह्मा जी लौट करके देखा कि अरे भगवान ने तो भगवान तो लीला कर रहे हैं। कंदरा के ढक्कन खोल करके देखा कि यहाँ तो सब सोए हुए हैं। तो बार बार इधर उधर देखते हुए देखा कि सचमुच ये परब्रह्म स्वयं भगवान है, हमने बड़ी भारी गलती की। उस समय ब्रह्मा जी ने क्षमा प्रार्थना के लिए स्तोत्र स्तुति की है, नौमिद्यति अब्रवपुषे तणिदम्बराय, हे इड्ड, हे पूज्य, हे भुवन के स्वामी, हे नवीन बादल के समान आपके मनोहर रूप, जो गले में बनमाला है, हाथ में कवल लिए हुए, भोजन करते हुए आप सखाओं के साथ में गोचारण करते हैं, लक्ष्मणश्री मृदुपदे पशुपांग जाय, हे नंद, हे ब्रजराज नंदन, लक्ष्मी जी जिनके चरण कमल की सेवा करती हैं, ऐसे कोमल चरणों के द्वारा आप ब्रज के इस कांटे कुश में सर्वत्र भ्रमण करते हैं, हे प्रभु आपको पुनः पुनः प्रणाम है। श्रुतियों में वेदों में सर्वत्र आपको ढूंढते ढूंढते सभी लोग परेशान हो गए, आज तक आपको पता नहीं चला, परंतु जिन पर आपका अनुग्रह हो जाता है वे तत्क्षणात आपके आपका अनुभव प्राप्त करते हैं। हे प्रभु, मैं सारे तीन हाथ का एक पुरुष हूँ और आप विश्व ब्रह्मांड के अंतर्यामी हैं। मैं केवल शरीर के अंदर में जानता हूँ परंतु बाहर हमारे अगोचर, इसलिए इसी में रहते हुए माता के गोदी में जैसे बालक खेलता कुत्ता है, इसी तरह से उसके अपराध को पिता माता ग्रहण नहीं करते। हे प्रभु, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। जानंत एव जानंत किं मे बहुक्ता न मे प्रभो, मनुषो वपुषो वाच वैभवं तव अगोचर। कोई जानते हैं तो जान ले और कोई समझते हैं तो समझ जाए, परंतु मन वाणी और शरीर के द्वारा आपके तत्व आपका वैभव अगोचर। ब्रज के गौए और माताएं कितने धन्य हैं, अहोत धन्ना ब्रज वो रमन्य, जिनके स्तन को आप पान करते हैं कि बछड़े या बालक बड़े हो जाने पर दूध तो मिलेगा नहीं माता का। जो स्तन पान करे तो छोटे से बालक बन करके आप उनके स्तन पान करते हैं, जो कि बड़े बड़े यज्ञों में आपकी आराधना करते हुए आज तक किसी ने नहीं पाया न संतुष्ट कर सका। इस प्रकार हे प्रभु, मैं अधिक क्या प्रार्थना करूं, इस ब्रजभूमि में कहीं मेरा जन्म हो जाए, वृंदावन में कहीं मेरा जन्म हो जाए, त्रिनगुल में बता हो करके जन्म हो। इसलिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है, परंतु उसमें भी निराशा का हाथ फेरते हुए उन्होंने फिर से कहा, जो श्रुतियां आज तक आपका अन्वेषण करके नहीं पाई है, तो मैं क्या करूं, इस ब्रज मंडल में कहीं निज जाति में निज कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति भी, जो कि निज काम को किया करते हैं साधारण श्रेणी के, ऐसे व्यक्ति जबकि पैर रगड़े पैर धोए, तो उसके लिए मैं एक पत्थर का टुकड़ा बन करके जन्म ग्रहण करूं और उसमें उनके चरण धूलि मुझे प्राप्त हो जाए। जब दिव्यतम तुम निखिलम भगवान मुकुंदम, जिनके जीवन स्वरूप भगवान मुकुंद, ब्रजवासियों के प्राण है कृष्ण और कृष्ण जरी शरीर है तो ब्रजवासी प्राण है, ब्रजवासी शरीर है तो कृष्ण प्राण है। इसी प्रकार एक दूसरों से जैसे संबंध है शरीर से प्राणों का, इसी प्रकार ब्रजवासियों के साथ में कृष्ण का संबंध है। उनके लिए कोई झूठे का, कोई आचार विचार का जरूरत नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। जो जैसे जिस प्रकार देते हैं, जिस प्रकार सेवा करते हैं, उनके लिए आप सर्वस्व दे देते हैं। उतना जैसे राक्षसी को मार करके आपने धात्री गति दे दी है, माता की गति दी, तो इन ब्रजवासियों को आप क्या देंगे हमारे समझ में नहीं। इसलिए हे प्रभु, आप स्वच्छंद विहारी हैं, स्वच्छंद रूप से आप लीला विलास करते रहे, तत्र अनुकंपां सुसमीक्ष मानो, जो आपके अनुग्रह की प्रार्थना करते हुए जीवन धारण करते, निरंतर नमन करते हैं, हे प्रभु आप उन्हीं पर अनुग्रह करते हैं, इसलिए हे प्रभु मैं पुनः पुनः आपके चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा करके हमारे प्रति दया दृष्टि कर। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, स्तुति प्रणाम करते हुए प्रदक्षिणा की और प्रणाम करके चल दिए और कृष्ण सखा के कंधे में हाथ डाल करके खड़े हैं और सखा लोग बोलते हैं चोमा चोमा चोमा, अरे भैया देखो 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 चार मुंह वाला कहां से आ गया, अद्भुत ये, ऐसा तो कभी देखा नहीं चार मुंह। तो इस प्रकार हास्य बहुत करने लगे सखाओं के साथ में, कृष्ण क्रीड़ा विहार करने लगे, ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगे प्रभु आप निश्चिंत रूप से भोजन करें, आपके लीला में हम कोई बाधा न डालें। इस प्रकार बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान के विविध प्रकार ऐश्वर्यमय लीलाओं को अवलोकन किया। इसलिए यह वत्सवन है, यहाँ पर बड़ा विहार स्थान है, इसलिए ज्यादा देर न करके हम लोग यहाँ से चलेंगे और यहाँ पर कृष्ण से हम यही प्रार्थना करेंगे, हमारे आदि गुरु ब्रह्मा जी ने जो प्रार्थना की उनका कृपा अनुग्रह हमें भी प्राप्त होता रहे।
इसके बाद हम लोग गुरु गोविंद रास्ते में होते हुए हम वृंदावन चलेंगे।
हुए हैं कि इस मंदिर का नाम गरुड़ गोविंद है, ये स्थान का नाम गरुड़ गोविंद। कहते गरुड़ गोविंद क्यों नाम पड़ा है, कहते किसी समय कृष्णा अपना सखाओं को साथ में मधुमंगल श्रीदाम सुबल अर्जुन स्तोक कृष्णा सखाओं को लेकर एक बार यहीं पर गोचारण करते करते आए। जब गोचारण करते करते आए तब कृष्णा हर समय सखाओं के पास में कहा करते थे, कहते जानते हो श्रीदाम हम कौन है, कहते तुम कौन हो बताओ, कहते हम वही सत्य युग में जो नारायण थे मैं वही नारायण हूँ, कहते तू नारायण, कहते और क्या, कहते केवल नारायण नहीं मैं ही मत्स्य कुर्म बराह नृसिंह वामन परशुराम राम जितने अवतार हैं मैं ही सब कुछ हूँ। तब हमारे श्रीदाम जितने सखा लोग वे तो सखेरस में है, जो सखेरस में है वे तो हर समय कृष्ण को अपना सखा मानते हैं, कृष्ण को भगवान मानना नहीं चाहते हैं। तब श्रीदाम कहते हैं तू भगवान कैसे, अरे तेरा साथ में जब हम कुश्ती लड़ते हैं तुमको हम ऐसे पछाड़ते हैं, तुमको हम पछाड़ देते हैं, और अगर कहीं दौड़ते हैं दौड़ते दौड़ते हम पहले चले जाते हैं और तुम पीछे पड़ जाते हो, जब कभी हम लोगों ने तुम्हारे साथ में खेला करते हैं हम तुमको परास्त कर देते हैं, तुम तो नंद बाबा मैया जसोदा का लाला हो और तू बोलते हो भगवान है, तू भगवान भगवान कोई नहीं, तू तो हर समय वैसे ही दीघाका करते हो, हर समय अभिमान करते हो मैं भगवान हूँ, हम भगवान भगवान मानना नहीं चाहते हैं, कहते मानने नहीं चाहते, कहते नहीं, कहते देखोगे कल दिखाओ क्या दिखाओगे। सखाओं को पता है कृष्ण कभी कभी कुछ चमत्कारिता को दिखाए, जैसे ब्रज में कभी भगवान अग्नि को भी पान किया, भगवान कभी गिरिराज गोवर्धन को भी धारण किया, सखा लोग जानते हैं कृष्ण कभी चुटकी कभी दिखाते हैं, चुटकी दिखाते हैं, क्या दिखाओ तुम क्या हो। उसी समय कृष्णचंद्र ने यहाँ पर वरद, इसी समय कृष्णचंद्र ने यहाँ पर ये गोविंद का रूप धारण किया, गोविंद यहाँ पर बार भुज भुजाओं को प्रकट किए थे, हर भुजा में शंख चक्र गदा पद्म आयुध, हर बार भुजा में बार अस्त्रों को लेकर के कृष्ण स्वयं यहाँ पर स्वयं नारायण का स्वरूप धारण किया। उसी समय श्रीदाम भी उसी समय वे गरुड़ बन गए, गरुड़ बन करके कृष्ण को अपना पीठ के ऊपर सवार करके यहीं पर उन्होंने आकाश मार्ग में भगवान को यहीं पर घुमाया था। यहाँ पर कहते हैं, कहते ये जो गरुड़ है ना ये हर समय भगवत तत्व में कुछ ना कुछ संदेह किया है, कहते राम अवतार में भी ये गरुड़ राम को जब रावण ने राम और लक्ष्मण को नागभास बंधन में बांध दिया था, जबकि गरुड़ आए और उसको बाद में फिर उनको नागभास बंधन से उनको छुटकारा मिला था, उसी समय गरुड़ को भी संदेह हो गया था, कहते ये भगवान कैसे हैं, अरे अगर ये हमारा प्रभु होते तो जब हम आए तभी उनको बंधन से मुक्त मिला, तब ये कोई साधारण नर ना ये स्वयं नारायण जो कि मेरा आराध्य रामचंद्र है, उनको संदेह हुआ था। कहते संदेह आत्मा विनश्यति, जिसको भगवत तत्व में वैष्णव और गुरु तत्व में संदेह होता है, कहते संदेह आत्मा विनश्यति। संदेह होने पर आत्मा विनश्यति मतलब उसी समय हृदय अशांत हो जाता है, हृदय भजन में मन नहीं लगना चाहता है। इसलिए गरुड़ को उसी समय भी संदेह हुआ था, वे फिर जबकि ब्रह्मा शिव फिर जब ये काक भूसुंड को पास में गए, काक भूसुंड भी अपना आत्मचरित्र सुनाया, कहता मेरा भी कभी भगवत तत्व में संदेह हुआ था, जबकि रामचंद्र राज दरबार में बैठ कर जहाँ पर मालपुआ खा रहे थे हम भी कभी दर्शन के लिए गया था, उसी समय मेरा भी संदेह हुआ था, लेकिन उसी समय रामचंद्र ने हमारा संदेह को दूर किया। इसलिए ये गरुड़ हर समय ये संदेह करते रहा, इसलिए यहाँ पर स्वयं भगवान गरुड़ को पीठ पर बैठ करके यहाँ पर भ्रमण किए थे, इसलिए गरुड़ गोविंद। और एक कारण बताते हैं, कहते ये गरुड़ को अभिसंपाद मिला था हमारे सौभर ऋषि ने, जबकि सौभर ऋषि काली हरद में तपस्या कर रहे थे, उसी समय गरुड़ ने एक मछली को उठा कर खाए, जिस समय उसको बच्चों का दुख देख करके ये सौभरी का क्रोध आया और उन्होंने कहा अगर तू दो बार यहाँ पर आओगे और ब्रज में प्रवेश करोगे, यहाँ पर मछली खाओगे, हम तुमको अभिसंवाद करता हूँ, तुम यहाँ ध्वंस हो जाओगे, तुम मारा जाओगे दो बार अगर यहाँ आओगे तो। इसलिए
दोबारा
इसलिए यहाँ पर ये जो स्थान है, यहाँ पर जो श्री राम ने गरुड़ का रूप धारण किया, कहते वृंदावन में तो है लेकिन वृंदावन का थोड़ा साइड में है, इसलिए यहाँ पर गरुड़ का रूप धारण किया। कहते जो गरुड़ है ये वज्रनाभ को द्वारा स्थापित किया गया। कहते हैं किसी समय जब यहाँ पर मुसलमान का आक्रमण हुआ, यहाँ का सेवकों ने ये हमारे गरुड़ गोविंद को यहाँ पर जो तालाब है ये तालाब में ही छोड़ करके चले गए, लेकिन भविष्य बाद में यहाँ पर कोई एक संत आए जहाँ की यहाँ भजन कर रहे थे, जब भजन कर रहे थे तो भगवान भक्तों का तो सेवा ग्रहण करते हैं, तो उन्होंने स्वप्न आदिष्ट किया, कहा देखो मैं वज्रनाभ का स्थापित किया गया, लेकिन मेरा सेवकों ने मुसलमानों का डर से मुझको ये सरोवर में छोड़कर चले गए, तुम मुझको उद्धार करके पुनः सेवा करो। फिर वो संत ने यहाँ पर एक गरुड़ गोविंद को स्थापन किए, इस तालाब से फिर ये मंदिर बना है। इसलिए कहते जैसे गरुड़ को मन में जैसे संदेह हुआ था, कहते हमारा मन में भी बहुत तरह तरह का गुरु वैष्णव के प्रति संदेह होता है, और हम लास्ट ये गरुड़ जी को दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि गरुड़ जी भगवान का भक्त है, और बिना भगवान का भक्त का आशीर्वाद से भगवत दर्शन नहीं होता है। इसलिए जगन्नाथपुरी में महाप्रभु भी गरुड़ पीछे खड़े होकर के जगन्नाथ जी को दर्शन करते थे, इसलिए हम लोग भी गरुड़ जी से प्रार्थना करेंगे, जैसे हमारा मन में जो गुरु जी को प्रति वैष्णव को प्रति और भगवान का प्रति हमारा जो संदेह है वो संदेह दूर हो जाए, और गुरु वैष्णव को और भगवान के चरण में हमारा अटूट श्रद्धा बने। और जैसे इसलिए पहले गरुड़ उसके बाद गोविंद है, कहते बिना भक्तों का अनुगत्य बिना भगवत प्राप्त नहीं होता है, इसलिए पहले गरुड़ जैसे हरे, हरे मतलब राधा, उसके बाद में कृष्ण है, पहले भक्त उसके बाद में भगवान है, इसलिए इनका नाम भी गरुड़ उसके बाद में गोविंद है। अभी रामचंद्र गुरु ने ट्रांसलेट किया। हरे कृष्ण।